ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। राजनीतिक समझदारी के साथ ही सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग का गठन होगा। संचार मंत्री गोकुल प्रसाद बासकोटा द्वारा जानकारी। राजस्व चुहावट अनुसंधान तथा नियंत्रण पहला संशोधन विधेयक 2076 राष्ट्रीय सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित। और गर्मी बढ़ने से ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से के जंगलों में लगी आग में हुई बढ़ोतरी। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बासकोटा ने कहा कि राजनीतिक समझदारी के साथ सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग का गठन किया जाएगा। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को सार्वजनिक करने के लिए आज संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में संचार मंत्री बासकोटा ने कहा कि देश में दीर्घकालीन शांति स्थापना के लिए सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग का गठन होना अत्यंत आवश्यक है। इसी तरह सूचना प्रविधि विधेयक के विषय में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए संचार मंत्री बासकोटा ने बताया कि प्रेस स्वतंत्रता के विषय में संसद में बहस एवं विचार विमर्श के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। इसी क्रम में मंत्री बासकोटा ने बताया कि सुरक्षा मुद्रण के विषय में फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा और इस विषय में सार्वजनिक लेखा समिति के साथ ही अर्थ समिति द्वारा अध्ययन किए जाने के बाद जो निर्देश दिया जाएगा वो सरकार को मान्य होगा। सरकार ने नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण द्वारा विभिन्न तीन कंपनियों के लाइसेंस खारिज करने के लिए किए गए फैसले को बदर किया है। मंत्रिपरिषद के निर्णय को साझा करने के लिए आज संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में संचार मंत्री गोकुल प्रसाद बासकोटा ने ये बात बताई। उन्होंने बताया कि समय पर शुल्क भुगतान न किए होने को कारण दिखाते हुए हेलो नेपाल समेत स्मार्ट टेलीकॉम और वेब सर्फर कम्युनिकेशन के लाइसेंस खारिज करने का प्राधिकरण द्वारा किए गए फैसले को सरकार ने खारिज किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उन कंपनियों को किस्तों में शुल्क भुगतान करने की सुविधा मुहैया कराने के लिए प्राधिकरण को निर्देश किए जाने का निर्णय भी सरकार ने किया है। इसके अलावा कई अन्य निर्णय सरकार ने किए हैं। संघीय निजामती सेवा विधेयक पर बहस के क्रम में राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के पदाधिकारियों से विचार विमर्श किया। विचार विमर्श के दौरान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल ने कहा कि निजामती सेवा और स्वास्थ्य सेवा को एक जगह रखकर एकीकृत कानून बनाते समय इस बात पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी भी तरह का विभेद न हो। इस दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्या और उनके संबोधन लगायत पहलुओं पर समिति ने मंत्रालय के पदाधिकारियों की राय मांगी थी। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक ने राजस्व चुहावट अनुसंधान तथा नियंत्रण पहले संशोधन विधेयक 2076 को सर्वसम्मति से पारित किया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की ओर से अर्थमंत्री डॉ युवराज खतिवड़ा ने प्रतिनिधि सभा के संदेश सहित प्राप्त इस विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया था। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक पूछ 27 गते रविवार को होगी। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को और भी मर्यादित व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार नया आयन ला रही है। आज सिंह दरबार में प्रतिनिधि सभा की शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति की बैठक में मंत्री पोखरेल ने ये बात भी बताया कि आने वाले शीतकालीन अधिवेशन में उच्च शिक्षा प्राविधिक शिक्षा और विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउबा ने कहा कि पार्टी में एकता बहाल करने और पार्टी के संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए आपसी सहमति का कोई विकल्प नहीं है। आज अपने ही निवास बूढ़ा नीलकंठ में कांग्रेस जिला सभापतियों के साथ विचार विमर्श में सभापति देउबा ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी पार्टी का एकताबद्ध होना बहुत जरूरी है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब वक्त है व्यापारिक विश्राम का।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते। आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहा नै हो. हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है.
हस् हस् भाउजू.
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न.
त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि.
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न.
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार.
अब बाँकी समाचार. सरकार ने पश्चिम एशिया में घट रही घटनाओं, वर्तमान सुरक्षा स्थिति तथा इन क्षेत्रों में कार्यरत नेपाली नागरिकों की स्थिति के विषयों में काम करने के लिए अंतरनिकाय समन्वय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है. परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार ग्यवाली की अध्यक्षता में परराष्ट्र मंत्रालय में आज हुई सरकार वाले निकायों के प्रतिनिधित्व सहित की बैठक ने यह निर्णय लिया है. बैठक ने पश्चिम एशिया में घट रही घटनाओं को पैनी नजरों से देखने और परिस्थिति अनुरूप और आवश्यकता अनुसार समन्वित ढंग से इन क्षेत्रों में रह रहे नेपाली नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर परराष्ट्र मंत्रालय की मध्य एशिया, पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका महाशाखा प्रमुख के समझौते में समिति गठन करने का निर्णय लिया है. इस समिति में मंत्रिपरिषद की कार्यालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय और नेपाली सेना के प्रतिनिधि रहेंगे. इसकी जानकारी परराष्ट्र मंत्रालय ने दी. उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने कहा कि राष्ट्रीय आवश्यकता के आधार पर ही पार्टी का एकीकरण हुआ है. नेकपा कास्की द्वारा पोखरा में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री पोखरेल ने कहा कि जनता की इच्छा एवं देश में अपेक्षित समृद्धि एवं विकास को मद्देनजर करते हुए दो बड़ी पार्टियों का एकीकरण हुआ है. काभ्रे प्लांचो की नवोबुद्ध नगर पालिका में 2 BP राजमार्ग स्थित सेल्फी डारा में एक ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौत हो गई है. जिला प्रहरी कार्यालय काभ्रे प्लांचो के DSP दीपक गिरी ने बताया कि धुलीखेल से भकुंडे बेसी की ओर जा रही टिपर अपने आप अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 250 फीट नीचे खाई में गिरी थी, जिस वजह से इसमें सवार 2 लोगों की घटनास्थल में ही मौत हो गई. आने वाले माघ 9 गते होने वाले राष्ट्रीय सभा सदस्य चुनाव के लिए कल उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह दिया जाएगा. इस बात की जानकारी निर्वाचन आयोग ने दी. कल दोपहर 1 बजे तक उम्मीदवारों की अंतिम नामावली प्रकाशित कर 7 प्रदेशों में रहे निर्वाचन अधिकृतों के कार्यालय से उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह दिया जाएगा. ये जानकारी आयोग के प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ ने दी. 7 प्रदेशों में महिला समूह की ओर 7, दलित समूह की ओर 2, विकलांग की ओर 2 और अन्य ओर 7 करके कुल 18 रिक्त पदों के लिए चुनाव होने जा रहा है. चुनाव के लिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी, नेपाल मजदूर किसान पार्टी और राष्ट्रीय जनमोर्चा सहित 6 राजनीतिक पार्टियों की ओर से कुल 45 उम्मीदवारों ने मनोनयन पत्र दर्ज करवाया है. ये जानकारी निर्वाचन आयोग ने दी. नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण ने ऑनलाइन बाल सुरक्षा निर्देशिका 2076 जारी किया है. सूचना तथा संचार प्रविधि के विकास के साथ ही ऑनलाइन वेबसाइट, ऐप, सामाजिक संजाल मार्फत बच्चे के ऊपर बढ़ते दुर्व्यवहार की घटनाओं को कम करने के लिए बने निर्देशिका को प्राधिकरण ने आज जारी किया. बच्चे को अभिभावक नहीं इंटरनेट की सुरक्षित प्रयोग तथा सुरक्षा औजार के सदुपयोग के संबंध में आवश्यक अभिमुखीकरण करने, जोखिमजन्य विज्ञापन तथा बच्चे को भड़काने वाली जैसे संदेशों को सीमित करने के लिए आवश्यक पहल करना संबंधित अभिभावकों की कर्तव्य होने की बात निर्देशिका में उल्लिखित है. अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार. गर्मी बढ़ने से ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से के जंगलों में लगी आग और भड़कने लगी है. इस स्थिति को देखते हुए विक्टोरिया प्रांत के प्रीमियर डेनियल लॉर्डन्स ने लोगों को अपील की है कि सतर्क रहे और इलाके से बाहर निकलने का निर्देश मिलते ही प्रभावित क्षेत्र छोड़ना शुरू कर दे. प्रांत के तटीय शहर मलकुटा में आग से घिरे लोगों को बीते बुधवार को सेना की मदद से निकाला गया. ऑस्ट्रेलिया में आग से जान गंवाने वालों की संख्या 27 हो चुकी है. अब मौसम. अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 13.7 और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। राजनीतिक समझदारी के साथ ही सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग का गठन होगा। संचार मंत्री गोकुल प्रसाद बासकोटा द्वारा जानकारी। राजस्व चुहावट अनुसंधान तथा नियंत्रण पहला संशोधन विधेयक 2076 राष्ट्रीय सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित। और गर्मी बढ़ने से ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से के जंगलों में लगी आग में हुई है बढ़ोतरी। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए दीजिए आज्ञा। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।